नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 19 श्लोक संख्या 4 है ना। श्लोक संख्या 4 न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिता परां मुखाये त्वमनस्विनो नृप युष्मात्कुले यद्दशमसामलेन प्रह्लाद उद्भाति इव इथोडुपखे। न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिता परां मुखाये त्वमनस्विनो नृप युष्मात्कुले यशसामलेन प्रह्लाद उद्भाति यथोडुपखे। न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिता परां मुखाये त्वमनस्विनो नृप युष्मात्कुले यशसामलेन प्रह्लाद उद्भाति यथोडुपखे। माता जी शब्दार्थ ना नॉट संती देर आर तीर्थे इन होली प्लेसेस वेयर चैरिटी इज गिवन युधि इन द बैटल फील्ड च ऑल्सो अर्थिना बाय अ ब्राह्मणा और अ क्षत्रिय अर्थिता हु हैव बीन आस्क्ड परांगमुखः हु रिफ्यूज्ड देयर प्रेयर्स ये सच पर्सन्स हु इंडीड अमनस्विनः सच लो माइंडेड लो ग्रेड किंग्स नृपा ओ किंग बलि महाराज युष्मत्कुले इन योर डायनेस्टी यत् देरिन यशसामलेना बाय इम्पेकेबल रिप्युटेशन प्रह्लाद महाराज उद्धाति अराइजेस यथा एज उडुपहा द मून खे इन द स्काय ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की सो लॉर्ड वामनदेव स्पीकिंग टू बलि महाराज ट्रांसलेशन ओ किंग बलि नेवर इन योर डायनेस्टी हैज द लो माइंडेड किंग बीन बॉर्न हु अपॉन बींग रिक्वेस्टेड हैज रिफ्यूज्ड चैरिटी टू ब्राह्मणाज इन होली प्लेसेस और फाइट टू क्षत्रियज ऑन अ बैटल फील्ड And your dynasty is even more glorious due to the presence of Prahlad Maharaj, who is like the beautiful moon in the sky. Purport. The symptoms of a Kshatriya are given in Bhagavad Gita. One of the qualifications is the willingness to give charity, dana. A Kshatriya does not refuse to give charity when requested by a Brahmana. Nor can he refuse to fight another Kshatriya. A king who does refuse is called low-minded. In the dynasty of Bali Maharaj, there were no such low-minded kings. So, aaj Guruvar hai, Brahaspatiwar hai, hamare mandir ke कमांडर मैनेजर जी का आदेश है कि हम हिंदी में कथा करें लेकिन हिंदी भागवत उपलब्ध नहीं था तो हमने अंग्रेजी में उसको पढ़ लिया तो वापस हिंदी में एक बार हम अनुवाद दोहराएंगे सब लोग दोहराइए हे राजा बलि तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा शूद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान न दिया हो या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो तुम्हारा वंश तो प्रह्लाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है तात्पर्य एक बार और पढ़ता हूं मैं हिंदी में भगवद गीता में एक क्षत्रिय के लक्षण दिए गए हैं, उनमें से एक लक्षण है दान देने की प्रवृत्ति। क्षत्रिय न तो कभी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर दान देने से मना करता है, न अन्य क्षत्रिय से युद्ध करने से इनकार करता है। जो राजा मना करता है वह क्षुद्र हृदय कहलाता है। बलि महाराज के वंश में ऐसे क्षुद्र हृदय राजा कभी नहीं हुए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम भगवान श्री श्री राधाराज बिहारी ललिता विशाखा जी गिरिराज गोवर्धन श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी गौनिताय जगद्गुरु शिल प्रभुपाद जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ उपस्थित भक्त वृंदों के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। विश्व का जो दूसरा महायुद्ध हुआ वह इंग्लैंड और उनके मित्र राष्ट्रों ने जीत लिया। जिस व्यक्ति के कारण जीता उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। उनको इंग्लैंड का लोह पुरुष कहा जाता है। तो वो कहते हैं स्टेज डेयरिंग नाम का एक प्रकार होता है। कई लोग बक 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 बहुत करते हैं, लेकिन जैसे माइक सामने आ जाए तो तत्पम हो जाते हैं। तो स्टेज डेयरिंग नाम का एक प्रकार होता है, तो लोग कुछ बोलने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उससे भी ज्यादा धाड़स जो है नीचे बैठ के सुनने वाले में होता है कि अपने सारे कार्यकलाप छोड़ करके नीचे बैठ के सुनने को आता है। बोलने वाला तो बोलने को लिए आता है, वो किसी तरह से धड़स बांध के, लेकिन सुनने वाला उससे भी डबल डेयरिंग वाला होता है। अपने सारे कार्यकलाप छोड़ करके, सारे कारोबार छोड़ करके, और खास करके मोबाइल वाला जियो छोड़ करके, जियो वाला मोबाइल छोड़ करके शांति से बैठ करके कथा सुनने के लिए आए, ऐसे लोग बहुत महान होते हैं। तो मुझे मालूम है आप सभी लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत ही जिम्मेदार हैं, फिर भी आप कथा सुनने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं आपके सारे भक्तों के चरणों की सादर वंदना करता हूँ। एक बार मुख्यमंत्री जी पागल खाने में आए थे और उन्होंने देखा एक पागल व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लेके पेड़ के पास कुछ तो कर रहा था। वो गए और उन्होंने उसको पीठ से ऐसे थपथपाए तो ऐसा वो पागल व्यक्ति ने हाथ में कुल्हाड़ी लेके देखने लगा। वो डर गया, अभी मेरे को मारेगा करके। तो उसने बोला मैं मुख्यमंत्री हूं। तुरंत वो उठ गया और उसके पीछे भागने लगा। तो मुख्यमंत्री जी भागने लगे, पागल व्यक्ति भागने लगा। बहुत देर तक उनकी दौड़ चलती रही, बहुत ही भागे। फिर बाद में उस पागल व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को पकड़ लिया। उसको लगा भी मुझे मारेगा। तो पागल व्यक्ति बोला वापस ऐसे कभी मत बोलो, मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था, मुझे इधर लाके रखा लोगों ने, आप कभी ऐसा सोचो मत कि मैं मंत्री हूं, प्रधानमंत्री हूं, मुख्यमंत्री हूं, ये हूं वो हूं, मैं तो आपको पागल समझ करके लोग पागल खाने में लाकर रख देंगे। पूरे भागवत का यही संदेश है, भगवत गीता का भी और आज का जो प्रसंग है बलि महाराज का, उनका भी यही संदेश है। मुख्यमंत्री तो क्या, बलि महाराज सारे ब्रह्मांड के राजा थे, सबके मालिक थे वो। इसीलिए कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया में कोई चीज शाश्वत है नहीं। तो आज के चर्चा सत्र में हम चर्चा करेंगे कैसे आधुनिक यशस्वी लोग भी विफल हो गए हैं, फिर बाद में कुछ शास्त्रों से उद्धरण है जो यशस्वी होके वो भी विफल हो गए। तो कृष्ण भगवान हमसे चाहते क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ शास्त्रों के उदाहरण हैं कि जिससे कृष्ण हमें कुछ सिखा रहे हैं। हिरण्यकशिपु जी असुर राज थे। जब उनका लाडला प्यारा बच्चा पाठशाला से पढ़ करके घर आया तो उनको गोद में लेकर के उन्होंने प्रश्न पूछा कि बेटा आज तुमने पाठशाला में क्या सीखा, सबसे अच्छी चीज क्या सीखी। वो क्या बोले, तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धुयाम सग्रहात् हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेतत्। उन्होंने बोला नहीं पप्पा, डैडी, बाबा, कुछ नहीं बोला उन्होंने। बोले असुरवर्य, हे असुरों में श्रेष्ठ हिरण्यकश्यपु जी, मेरे ख्याल से तत् साधु मन ने, मेरे विचार से मैंने यह समझ लिया है ये दुनिया में हर व्यक्ति सदा समुद्विग्न, हमेशा ही टेंशन में होता है, उद्विग्न रहता है। कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई सत्ता में हो कोई सत्ता में ना हो, कोई सुंदर हो या कोई उतना सुंदर ना हो, कोई बूढ़ा हो या कोई जवान हो, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात। क्यों उद्विग्न है, क्योंकि उन्होंने गलत चीज को पकड़ के रखा है। असद्ग्रहात, असत मीन्स जो चीज सत्य नहीं है उसको पकड़ के रखा है। इसलिए वो हमेशा ही उद्विग्न, स्ट्रेस, टेंशन और चिंताग्रस्त दिखते हैं और होते भी है। तो उनके लिए मुझे लगता है, पिताजी बोले ही नहीं, आसुरवर्य बोले, उनके लिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को वृंदावन चले जाना चाहिए और हरि मा आश्रय तक उनको भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। प्रह्लाद महाराज के वचन के अनुसार इस दुनिया का हर व्यक्ति उद्विग्न है। जिस जिस व्यक्ति ने गलत चीज को पकड़ के रखा है, चाहे वो सौंदर्य हो, पैसा हो, शरीर हो, घर हो, ऐश्वर्य हो, कुछ भी हो, जो जो चीजें हमें कृष्ण की ओर नहीं लेके जाते, ऐसी चीजों को पकड़ के रखने के कारण ही हम सदा समुद्विग्न, हमेशा हमेशा उद्विग्न ही रहेंगे। जय श्री श्री राधा राज हरि भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौनीताय की, शिल प्रभुपाद की। लेकिन हमारी गलत धारणा है, हमको लगता है मैं थोड़ा और प्रयास करूंगा, मैं थोड़ा और एडजस्टमेंट और करूंगा, थोड़ा और प्रगति करूंगा, उसने थोड़ा गलत किया था, मैं थोड़ा और करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। प्राचीन जमाने से, युगान युग से, कल्पों से हम उदाहरण देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति, जैसे बलि महाराज जी इस ब्रह्मांड के सबसे सफलदायक व्यक्ति थे, फिर भी भगवान ने उनको उस स्थिति में रहने के लिए अनुमति नहीं दी, वहां से उनको हिलाया। बलि महाराज से लेकर के आज तक हम देखते हैं अर्वाचीन मानव समाज में, आधुनिक मानव समाज में कोई कितना भी सफलदायक क्यों ना हो, उसको भगवान चैन से रहने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने गलत चीजों को पकड़ के रखा है। आजकल के विद्यमान विद्यार्थीगण जो है, अच्छा अच्छा इंजीनियरिंग करके कहीं TCS में जॉब मिले, कहीं टाटा में जॉब मिले, कहीं बाहर जॉब मिले, इंफोसिस में मिले, बहुत प्रयास करते, लेकिन उनके फाउंडर आचार्य अगर हम देखेंगे, TCS के वगैरह, रतन टाटा 80-90 साल की उम्र में अभी संघर्ष कर रहे, मेरा वारिस कोई नहीं है, मेरे कंपनी को कोई लावारिस ना छोड़े तो मैं किसी को बिठा दूं, रात बरात वो सो नहीं पाते हो। अगर उसके मालिक के फाउंडर आचार्य ऐसे हैं तो इंजीनियर लोग क्या करेंगे अंदर के, सारी कंपनियों का ऐसा ही है। रेमंड द कंप्लीट मैन अपनी 40 मंजिल बिल्डिंग के सामने भाड़े के घर में रह रहे, इनकम्प्लीट होके। ये दुनिया में कोई भी उदाहरण ले लो, कितना भी हजारों करोड़ का कारोबार क्यों न हो, या बलि महाराज जैसा साम्राज्य क्यों न हो, भगवान श्री वामन देव, श्री श्री राधा राज भी हरि किसी को स्थिर स्थावर नहीं रहने देते। दुखालयम अशाश्वतम, ये भगवान का वचन है। अगर मैन्युफैक्चरर, बनाने वाले नहीं ऐसा बने हैं, तो हम कैसे उसको ठाक ठुक करके एडजस्टमेंट करें, संभव ही नहीं है। हम बहुत प्रयास करते कि मैं ये पद में जाऊंगा, ये पोजीशन में जाऊंगा, बाहर की दुनिया में भी और आध्यात्मिक समुदाय में भी दिखा जाता है, लेकिन हम भागवत ठीक से पढ़े तो समझ में आता है ये दुनिया में कोई भी स्टेबल नहीं है। ये तीन जो शब्द है ना, स्टेबिलिटी, कंफर्ट और सिक्योरिटी, ये काल्पनिक है। ये दुनिया में, इस दुनिया में स्टेबल नाम की कोई चीज है ही नहीं। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, उनको कोई विरोधक था ही नहीं, सबके सब अपने आप आकर के उनका टैक्स कर चुकाते थे, उनको युद्ध करना ही नहीं पड़ता था, उनको भी भगवान ने शांति से रहने नहीं दिया। ऐसा कुछ नियोजन किया कि वो भी अपने पद से निकल गए। श्रीमद् भागवत कहता है, नैमिषारण्य के ऋषि कहते हैं, आत्मजायाश्रुतागारो पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चा विकलम नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहौ। सबके सब चीजें, आत्मा, अपना शरीर भी उन्होंने भगवान की सेवा में समर्पित किया, जाया, पत्नी, सुत अपना घर, आगार अपना राज्य, सब कुछ उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित किया। कोई चक्रवर्ती सम्राट हो या कोई चपरासी हो या कोई भंगी हो, भगवान किसी को भी जब तक अपने चरणों में आते नहीं तब तक शांति से रहने नहीं देते। इसीलिए ध्रुव महाराज कहते हैं, जब भगवान उनको प्रसन्न हो गए मधुवन में, भगवान बोले कुछ तो मांगो। भगवान जानते हैं हृदय में परमात्मा के रूप में वो आए हैं अपने परदादा से भी बड़ा पद प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्राप्त करने के लिए। अभी ब्रह्मा जी से बड़ा पद कौन सा है? वो प्राप्त करने के लिए ध्रुव महाराज आए थे। वो कहते हैं स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुह्यम काचं विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। हे भगवान, मैं तो एक अढल स्थान प्राप्त करने के लिए आया था, ऐसा स्थान जिसमें से मुझे कोई हिलाए नहीं। अभी इस दुनिया में ध्रुव महाराज ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे और उसके लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की, जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है, भागवत में आया है। बहुत कड़ी तपस्या की कि ऐसा स्थान जहां से उनको कोई हिलाए नहीं। लेकिन चाहे वो अपना घर हो, चाहे वो अपना देश हो, कौन से भी परिस्थिति में हम जाएंगे तो वहां से हिलाया जाएगा। जैसे माँ अपने बेटे पर बहुत प्रेम करती है, जैसे उसका विवाह हो जाता है तो सास और बहू की लीलाएं तो हम लोग सुने हैं बहुत कुछ और देखते भी हैं, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी एक ही है, इसका बेटा और उसका पति एक ही व्यक्ति है। उधर से क्योंकि असत ग्रह गलत चीज को पकड़ के बैठे, ध्रुव महाराज अगर कहते हैं कि मुझे, मैं कुछ अटल स्थान प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में आया था, हे भगवान काचम विचिन्वन, वो तो कांच के टुकड़े हैं। मतलब अगर हम समझे कि कोई यश या सफलता हमें इस दुनिया में मिले तो वह कांच के टुकड़े के समान है। तो टूटे हुए कांच के टुकड़े कैसे होते हैं, क्या करते हो? हाँ, चुभते हैं, जख्म हो जाता है, उसमें से रक्त तो होता है, वेदनाएं होती है। तो उसी तरह से इस भौतिक दुनिया की सफलताएं कुछ भी हो, मैं ये पढ़ा, मैं बीटेक किया, एमटेक किया, मैं ये किया, मैं सीए किया, मैं कुछ भी प्राप्त करूं, मैं अच्छा प्रवचन किया, मैं अच्छा कीर्तन किया, मैं अच्छा प्रसाद बनाया, भोजन किया, भगवान को भोग लगाया, मैं अच्छा मैनेजमेंट किया, मैं बुरा मैनेजमेंट किया, मैं ये किया, मैं वो किया, कुछ भी हम भौतिक दुनिया में प्राप्त करने का, डिग्री प्राप्त करने का या पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करें तो उसमें से दुखी प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गलत चीज हमने धारण की है। अरे करने वाले जो कुछ भी है वो भगवान है, लेकिन हम सोचते कि मैंने किया, इसलिए हमें टेंशन, स्ट्रेस और दुख मिलता है, इसने ऐसा किया। आपको मालूम है एक बीमारी आई थी, उसका नाम था इबोला। उससे खतरनाक एक बीमारी है, इबोला है, आपको मालूम है? उसने बोला, ये बोला, वो बोला, क्या क्या नहीं बोला, बहुत कुछ बोला। हाँ, मेरे बारे में बोला, मेरे बारे में बोला, ये बहुत बड़ी बीमारी है, उससे भी ज्यादा। तो हम लोग ऐसे चीजों को पकड़ के बैठते हैं, इसलिए सदा समुद्रिक में धियाम असत ग्रह। आज के श्लोक में भगवान ही वामन देवी बलि महाराज को बोल रहे, आपके दादाजी जो है प्रह्लाद महाराज, जो आकाश में चंद्रमा किस तरह स्थित है, अंधेरे में चंद्रमा जो है पूरी दुनिया को प्रकाश देते हैं, वनस्पति को सजीवित करते हैं, वैसे ही प्रहलाद महाराज इस वाक्य के द्वारा हमको समझा रहे हैं, ये दुनिया में सफलदायक बनने का प्रयास मत कीजिए। सफलदायक बनना है तो हमें प्रभुपाद जी की सेवा में, राधा राज बिहारी की सेवा में सफलदायक बनना है। जो कुछ भी सेवा मिले, चाहे बर्तन धोने की हो या शौचालय धोने की हो या कीर्तन करने की हो या प्रसाद खाने की हो, कुछ भी सेवा हो, जो मिले वो सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। परीक्षित महाराज कहते हैं, जब उनको वो श्राप मिला तब, पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्याम् उपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। हे ब्राह्मणों, हे वैष्णव सज्जनों, मुझे मालूम है इस दुनिया में स्थिर स्थावर कोई नहीं रह सकता। मेरे को तो किसी को चुनौती नहीं थी, फिर भी मेरा एक निवेदन है आप लोगों के प्रति, पुनश्च आप मुझे आशीर्वाद दो, पुनश्च भूयात् भगवती अनंते, भगवान श्री कृष्ण श्री अनंत के प्रति मेरी आसक्ति बढ़े, उनके भक्तों के प्रति मेरी आसक्ति बढ़े। तदाश्रयेषु, उनका जिन्होंने आश्रय लिया है उनके प्रति मेरी आसक्ति बढ़े। अगर आपको लगता है कि मैं भगवत धाम नहीं जाऊंगा, मैं उतना पापी हूं, उद्दंड हूं, आपको अगर ऐसा लगता है मैं बार बार जन्म लूंगा इस दुनिया में, तो मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य, मुझे सभी जीवों से मैत्री भाव दीजिए, क्योंकि वो याद कर रहे थे शमिक ऋषि के प्रति किया गया अपराध। तो इस भावना से हमें भक्तों के समुदाय में रहना है, बाहर की दुनिया में भी हमें भगवान के प्रति ज्यादा आसक्ति निर्माण करनी है, सबसे ज्यादा। और उनका आश्रय जिन्होंने लिया है श्रील प्रभुपाद जी, उनका आश्रय हमें लेना चाहिए, उनके ग्रंथों, प्रभुपाद का आश्रय लेना मतलब प्रभुपाद के ग्रंथों का आश्रय लेना, प्रभुपाद की शिक्षाओं का आश्रय लेना। और जब तक इस दुनिया में भटक रहे हैं, इस जन्म में अगले जन्म में पता नहीं कब भगवत धाम जाएंगे, तब तक सारे लोगों से मैत्रीपूर्ण संबंध होना, यह परीक्षित महाराज ने दिया हुआ शांति सूत्र है, सुखी जीवन का सूत्र है। लेकिन झगड़ा कब होता है? ध्याम असदग्रह, गलत चीज पकड़ के बैठे रहते, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक ही रहती है लगभग, जैसे सास और बहू की एक ही प्रॉपर्टी रहती है, वैसे जो पद है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, पैसा है, ये कॉमन ही रहता है, बहुत सारे लोग उसको लेना चाहते हैं, सौंदर्य है, जो भी है। तो इसलिए हमें इन महाजनों का चरणानुगमन करके अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। बलि महाराज क्यों महाजन बने? अभी वामन देव उनको कथन कर रहे हैं, आपका परिवार इतना महान है, अपना आपका कुल इतना महान है, वगैरह वगैरह वगैरह। तब तक तो बलि महाराज आसुरी प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन भगवान ने छल करके उनसे तीन पग का वचन लिया और उसके बाद उन्होंने अपना विराट रूप दर्शन किया, वामन रूप, दो पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए उनको जगह नहीं थी। तब बलि महाराज को उन्होंने पूछा, बोलो बलि महाराज मैं कहां पे रखूं अपना तीसरा पैर? तब बलि महाराज की जो भावना थी वह भावना ने उनको महाजन बना दिया। वो सोच रहे थे कि मैंने अपराध किया है भगवान के प्रति, मैंने वचन दिया कि आप तीन पैर जमीन नाप ले सकते हो, लेकिन मैं यह अभिवचन जो है पूरा नहीं कर पाया, दो ही पग में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, मैं कितना अपराधी हूं कि भगवान का वचन मैं पूरा नहीं कर पाया, भगवान को दिया हुआ वचन मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं कितना अपराधी हूं, मैं कितना पापी हूं, मैं कितना अधम हूं, यह बलि महाराज की चेतना थी। बलि महाराज ने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऊपरी करण से वैसा ही प्रतीत होता है, अन्याय हो रहा है। पहले भगवान को ऐसे रूप में आना चाहिए था, फिर बलि महाराज सोचते थे देना है कि नहीं देना है, ऐसा क्यों छल किया, ये छल ही है, आप मानो या मानो। श्रील जयदेव गोस्वामी बोलते हैं छल है करके,
छल यसि विक्रम ने बलिमद्भुत वामन पदन खनीर जनित जन पावन केशव धृता वामन रूप जय जगदीश हरे।
बलि महाराज को छल करने के लिए वामन रूप धारण करके आए और उन्होंने गंगा जी को जन्म दिया। ऐसे जगदीश भगवान की जय हो, ऐसे श्री केशव की जय हो जो वामन देव के रूप में आए। वास्तविक रूप से भगवान ने उनके साथ छली किया था, लेकिन बलि महाराज बोले नहीं कि छल है करके, ये मेरे प्रति अन्याय है करके। वो बोले भगवान आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मैंने गलती किया, मैंने आपको तीसरा पैर रखने के लिए जगह मैं दे नहीं पा रहा हूं भगवान। यह भावना जिस भक्त के में भक्त में होती है वह भक्त भगवत धाम जा सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते तत्ते अनुकंपाम सुषमिक्ष माणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम ऋद्वाग पूर्भीर विदधन नमस्ते जीवे त्यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये भगवान आप जो भी मेरे जीवन में करते हैं वह सब आपकी कृपा है। हम जैसे भक्त क्या सोचते हैं, नहीं 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 उसने गलती की है, मेरे जो अधिकारीगण है मैनेजर लोग हैं उन्होंने गलती की है, उन्होंने मेरे पर अन्याय किया है, या हमारे ऊपर की अथॉरिटी है उन्होंने अन्याय किया है। वास्तविक रूप से देखा जाए इसका मतलब हमारा राधा राजबिहारी या कृष्ण भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है कि वो सजीव है, एक्टिव है, फंक्शन में है। अगर फाउंडर आचार्य या संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद खुद बोलते कि नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते काष्ठेर पुतली यथा नाचाओ से मते, कि मैं भगवान के हाथ में कठपुतली हूं तो बाकी सब भी कठपुतली है, लेकिन वो हमारी गलत धारणा होती है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा पड़ोसी भक्त जो है उसने गलती की इसलिए मेरा कपड़ा सूखा नहीं, इसलिए रात को फैन चालू रहा, मेरे को सर्दी हो गया, उधर से चालू होता है और आगे जाके कहां कहां तक बढ़ता है वो। हम समझते हैं कि सब भगवान की लीला है, लेकिन बलि महाराज समझे कि भगवान की यह कृपा है मेरे ऊपर, अनुकंपाम तत्य अनुकंपाम, ये अनुकंपा है, इसलिए बलि महाराज इतने महान बन गए। शुरुआत में जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को प्रश्न पूछा था कि हे सुखदेव गोस्वामी जी अभी मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है बताओ, सब लोग मरने वाले ना इस दुनिया में, सब लोग मरने वाले आज या कल, हाल ही में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मर गया ना पिछले हफ्ते, हाँ वैसे पिछले हफ्ते बहुत लोग मरे हुए हैं, एक ही याद आ रहा है आपको। तो हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति का आद्य कर्तव्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते देते सुखदेव गोस्वामी आए, कथा करिए, कथा सुनिए वगैरह वगैरह, और जब अजामिल उपाख्यान में आए तो उनको वापस उन्होंने बहुत जोर से बताया, जोर देके बताया अजामिल के कथा के अंत में, म्रियमानो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगद्धाम किमूत श्रद्धया गृणन। मरने वाले अजामिल ने भगवान हरि का नाम लिया, वो भी हरि का नाम नहीं था, अपने पुत्र को उच्चारण कर रहा था। अजामिल जो है भगवान हरि का नाम नहीं ले रहा था, वो भगवान नारायण का नाम नहीं ले रहा था, वो नाम ले रहा था अजामिल नंदन नारायण, अपने ही पुत्र का नाम ले रहा था वो। अजामिलोपिया गद्धाम, वो भी भगवत धाम चला गया, किमूत श्रद्धया गृणन। हे राजा परीक्षित, अगर आप श्रद्धा से नाम लोगे तो आपका संशय कहाँ है कि आप भगवत धाम जाओगे या नहीं जाओगे? आप तो डेफिनेटली 100% भगवत धाम चले जाओगे। श्रद्धा से हरिनाम लेना है। अगर हमें स्टेबिलिटी, स्थिर स्थावरता, कंफर्ट और सिक्योरिटी चाहिए ना, तो जैसे अजामिल को हरिनाम से सिक्योरिटी मिली, यमदूतों से रक्षण हुआ, उसी तरह से हमें भगवान के भक्ति में श्रद्धा निर्माण करके उनका आश्रय लेकर के हरिनाम और हरिकथा के माध्यम से, उनके सेवा के माध्यम से, उनके भक्तों के संग के माध्यम से हमें स्टेबिलिटी ढूंढना चाहिए। और किसी चीज में स्टेबिलिटी, स्थिरता है ही नहीं। श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति को ले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब क्या है? कृष्ण भक्ति किया तो सब कुछ हो जाएगा। और कृष्ण भक्ति का मतलब क्या है? नवविधा भक्ति। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं हरिनाम का आश्रय लेना, इसमें सारे नवविधा भक्ति परिपूर्ण हो जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताए, और 64 में से 5 अंग जो है वह है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धया सेवन। हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है या नहीं है, इसका एक बैरोमीटर है कि हम ये 5 चीजों के प्रति स्वयं प्रेरणा से, ऐसा नहीं कि हमारा मैनेजर बोल रहे हैं या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोल रहे हैं या हमारे अध्यक्ष बोल रहे हैं, उनके कारण हमारी रुचि हम कर रहे हैं। स्वयं प्रेरणा से ये 5 चीजों में जितना हमारी आसक्ति, रुचि, निष्ठा बढ़ेगी, उतना हम भक्ति में प्रगत कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि कितने साल हम इस कौन में गुजार रहे हैं, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, कितने भी हो, लेकिन कितना हम इन 5 चीजों के प्रति आसक्त तो होते जा रहे हैं दिन ब दिन, उतने हमारी प्रगति में प्रगति हो रही है समझने का। और ये कम हो रहा है, इसका मतलब हम उल्टी दिशा में बह रहे हैं। यही भगवान श्री कृष्ण जो है देखना चाहते हैं कि कितना हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा में आसक्ति बढ़ती है, श्रद्धा में पुकार बढ़ती है। जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में दरवाजा बंद करके कीर्तन करते थे तो किसी को अनुमति नहीं थी वो कीर्तन में भाग लेने की या देखने की। लेकिन एक दुग्धाहारी ब्राह्मण केवल दूध पीता था तो उसने श्रीवास ठाकुर की अनुमति लेकर के छिप करके वो कीर्तन देख रहा था। महाप्रभु बोले, आज मेरे को कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है जो बिना कूपन के अंदर आ गया? तो श्रीवास बोले, कोई नास्तिक नहीं है भगवान है। श्रीवास को कुछ तो प्रयास कर रहे थे भगवान को शांत करने, कोई नास्तिक नहीं है, सब अच्छे लोग है, तपस्वी है, ये है वो है, कोई है जिसको यहां नहीं होना था? तो जैसे ही बड़ी आवाज सुनी तो खुद ब्राह्मण उठ करके, दुग्धाहारी ब्रह्मचारी उठ करके छिपके से बाहर जाने लगा। तो महाप्रभु ने उसको बोला, तुझे क्या लगता है कि केवल दूध पीने से मेरी प्राप्ति होती है? गजेंद्र ने कौन सी तपस्या की थी? द्रौपदी ने कौन सी तपस्या की थी? केवल भक्तिमय पुकार से ही मेरी प्राप्ति हो सकती है और किसी से नहीं। तो भक्ति मतलब भगवान को आर्त भावना से पुकारना, आश्रय लेने की भावना से, जैसे गजेंद्र ने पुकारा था। श्री गजेंद्र उवाच, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधीमहि। उसको भगवान का नाम भी मालूम नहीं था, भगवान नारायण है, हरि है, कौन है मालूम ही नहीं था। जो सबसे श्रेष्ठ है उनको मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे सारे सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय, कि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते जैसे गजेंद्र ने पुकारा था, उस भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। गजयूथ पाय, नरसिंहदेव को प्रहलाद महाराज जब शांत कर रहे थे उसमें गजेंद्र का उदाहरण दिए थे, तो उस आर्त भावना से पुकारना चाहिए। लेकिन हमारी समस्या कि हम कैसे पुकारते हैं, जैसे बच्चा माँ के सामने रोता है तो माँ कुछ खिलौना देती है, चुप बैठ। अभी की माँ कार्टून के सामने बिठा देती है, देख पोगो देख, डोरेमोन देख, टॉम एंड जेरी देख, छोटा भीम देख। लेकिन अगर हम आर्त भावना से पुकारे कि माँ मुझे तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उसी भावना से अगर हम कृष्ण को पुकारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, तो कृष्ण हमें लेने आएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा, मैंने कई जब देखे भक्तों के पिछले 15-20 साल में, कृष्ण राम 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 राम, कृष्ण राम 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 राम, कृष्ण राम राम राम, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब इतना तीव्रता से हरिनाम हो, हरि कथा हो, भगवान की सेवा हो, अंदर किसी फोर्स से नहीं करना चाहिए, अपने स्वयं से करना चाहिए, तीव्रता से। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार भी तीव्रे न, पहला ही आदेश दिया सुखदेव गोस्वामी जी ने, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। लाव ली जाओ, टिमके बजाओ, थुका पॉलिश, सामान्य लोगों का यही चलता है। तो हमें तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। जैसे महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य जी कहते हैं, क्यों भीष्मदेव ने द्रौपदी का वस्त्र हरण में संरक्षण नहीं किया, वो तो महाजन है, उनको मालूम है गलत क्या है सही क्या है। तो मध्वाचार्य जी समझाते हैं कि ये भीष्मदेव जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान का आश्रय ले ले, ये भीष्मदेव जानते थे, इसलिए उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया भगवान के प्लान के साथ। फिर आगे जाकर के लीलाशुक बिलोमंगल ठाकुर समझाते हैं वो कैसे। तो द्रौपदी स्वयंवर का कल्पना कीजिए थोड़ा, उसके उदाहरण के तौर पर समझो लोकसभा है, और लोकसभा में कितनी स्त्री का वस्त्रहरण हो रहा है, कोई सहन करेगा? हस्तिनापुर तो लोकसभा नहीं थी, पूरी दुनिया की राजधानी का शहर था, उसके राजदरबार में सम्राट धृतराष्ट्र के सामने और आगे युधिष्ठिर बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, उसका वर्णन करते बिलोमंगल ठाकुर, अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम दुशासनेनार्हित वस्त्र केशा कृष्णा तदाक्रोशदनंदनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। अग्रे कुरुनाम, भीष्मदेव बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे, अथ पांडवानाम, इधर पंच पांडव भी बैठे, उनके सामने 10,000 हाथियों का बल लिए हुए दुशासन उनके वस्त्र और केश दोनों का हरण कर रहा है। ऐसी अवस्था में द्रौपदी ने कहा, कृष्णा तदाक्रोश अनन्यनाथा, मेरा कोई अन्य नाथ है ही नहीं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरा रक्षण करो। यह आक्रोश जो है उसको भक्ति कहते हैं, यह तीव्रता जो है उसको भक्ति कहते हैं, और उसी के कारण भगवान उनको रक्षण करने के लिए आ गए। लेकिन हमारी बहुत डिम लाइट की तरह भक्ति चलती है, इसलिए भगवान का इतना अनुभव हमें आता नहीं और हम झगड़ा करते बैठते हैं। अंदर भी चलता है, हमारे अंदर झगड़ा मन के अंदर भी चलता है, क्यों करूं मैं 16 माला प्रभुपाद, 16 क्यों? एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा, 16 माला अच्छे हुए कैसे समझना है? प्रभुपाद बोले, 16 माला ही क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं? हमारा बराबर उल्टा होता है, प्रभुपाद 16 माला क्यों, 8 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? हमारी गाड़ी किधर जा रही है हमें देखना चाहिए। चित्रकेतु महाराज बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में थे, भजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, अपने पत्नी के साथ विमान में घूम रहे थे चित्रकेतु एयरलाइन से, लेकिन भगवान ने उनको भी वहां से हिला दिया। क्यों हिला दिया? क्योंकि वो यह आर्त पुकार देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवान हरि, मैं आपके चरणों के दासों के दासों के अनुदास का मैं वापस अनुदास बनूं, ऐसा मुझे वरदान दो। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोति काया। और मन से मैं आपकी लीलाओं का स्मरण करूं, मेरे शरीर से कर्म से मैं आपकी सेवा करूं, ऐसा मुझे वरदान दे दो। भगवान पूछते, अरे तेरे को पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद? नहीं नहीं भगवान, मुझे नहीं चाहिए। न ना कप्रेष्ठम न च पारमेष्ठम, ना मुझे इंद्र का पद चाहिए न पारमेष्ठ ब्रह्मा जी का पद चाहिए। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, ना इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट मुझे बनना है, न रसाधिपत्यम, ना तो मुझे पाताललोक का साम्राज्य पद चाहिए। न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा, ना तो मुझे अष्ट सिद्धि चाहिए या मोक्ष चाहिए। समंजसात्वा विरहय कांक्षे, केवल आपका संग और आपकी सेवा चाहिए। विरह हो रहा है मेरे से? भगवान बोले हाँ विरह हो रहा है, कैसे उदाहरण दो। तो वो आगे जाके उदाहरण देते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथावत् सतरह क्षुधारता। प्रियम प्रियैव विउषितम विषन्ना, मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। कि जिस तरह से एक पंछी है, छोटा पंछी, जिसके माँ बाप बाहर दाना लाने के लिए गए, वो अपने माँ बाप का इंतजार करता है। जिस तरह से छोटा बछड़ा अपने गाय का दूध पीने के लिए, माँ का दूध पीने के लिए तरसता है, और जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति के लिए तरसती है, उसी प्रकार से भगवान मैं आपके प्रति तरसता हूँ। अभी समझो मैं आपको भगवत धाम नहीं लेके जाऊंगा तो कोई बात नहीं, ये तो वरदान दे सकते आप मेरे को। मम उत्तम श्लोक जनेश सक्षम, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। हे भगवान, मेरे कर्म से मैं किधर भी घूमू, मैं 14 लोकों में, इस भौतिक दुनिया में किधर भी घूमू मैं मेरे अपने कर्मों से, लेकिन आपके जो भक्त है, आपके जो आश्रित संत सज्जन है, उनका मुझे सख्य दे दो, उनका आश्रय दे दो, उनके आश्रय में मुझे रहने दे दो। और एक वरदान भगवान, त्वमात्म माया मजदार गेहेशु, और आपकी माया से जो माया मोह जो निर्माण हुआ है, उससे मैं वापस आसक्त चित्तस्य ननाथ भूय, वापस मैं आसक्त ना हो जाऊं। तो यह जो आर्त पुकार है, वही भगवान सुनना चाहते थे, इसीलिए चित्रकेतु से लेकर के उनको वृत्रासुर बना दिया। तो सारांश में आज हमने चर्चा की है कि कैसे आज के श्लोक में भगवान जो है प्रहलाद महाराज का चंद्रमा की तरह उपमा देकर के गुणगान कर रहे हैं, और वही प्रहलाद महाराज आगे उदाहरण देते हैं कि असत ग्रह गलत चीज को धारण करने से हम उद्विग्न हो जाते हैं और हमें दुख प्राप्त होता है। जैसे ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं कांच के टुकड़े लेने आया था। तो इस दुनिया में स्टेबिलिटी, कंफर्ट और सिक्योरिटी नहीं है, यही हमें प्राचीन उदाहरणों से और आधुनिक जो भी हम देखते हैं उनसे भी देखते हैं, कुछ है ही नहीं। तो क्यों भगवान हमें ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखते हैं? क्योंकि भगवान हमें आर्त पुकार हमारी सुनना चाहते हैं, जैसा कि गजेंद्र की हो, द्रौपदी की हो, गोपियों की हो, वृत्रासुर की हो, या परीक्षित महाराज की हो। ऐसा करने से, श्रील प्रभुपाद जी के चरणानुगमन करने से, जैसा वो स्वयं को एक तुच्छ सेवक समझे, तो हालांकि वो इतने महान सेवक है, उनका चरणानुगमन करने से, तीव्र भावना से अगर हम उनके ग्रंथों का, हरिनाम का और भगवान की सेवा का आश्रय ले ले, तो हम भी श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी की कोई टीका टिप्पणी? प्रश्न? वैसे समय हो गया है, लेकिन एक प्रश्न ले लेंगे।
एक पर्टिकुलर मतलब सरकमस्टेंशियल था वो, मतलब उस सरकमस्टेंशियल में वो फंसे थे, इसलिए वो तीव्रता से भक्ति कर पाए, उतना तीव्रता से भगवान को पुकार पाए। अगर हम तीव्रता से करना चाहते हैं तो हम अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो
यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैं बहुत अभी कंफर्टेबल हूँ, मेरे को कोई टेंशन है ही नहीं, मैं मतलब मेरे को कोई संकट आने वाला है ही नहीं, मेरे को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं ऐसे मृत्यु में अवस्था में है ही नहीं द्रौपदी की तरह, गजेंद्र की तरह, यह हमारी गलतफहमी है। ये तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं और उनके गुरु भाई भी प्रभुपाद जी के बोले कि हमको डर यही है कि आप लोगों को माया का भय है नहीं, माया को जितना डरना चाहिए उतना डरते नहीं, हम ऐसी विकट अवस्था में हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खुद भागवत पढ़ेंगे या प्रभुपाद जी जैसे संतों से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हम बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में है। तो उस तीव्रता से हमें करना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकता है। हाल ही में पिछले हफ्ते में मेरे गुरु भाई थे, इंटरनेशनल आयुर्वेदा डॉक्टर थे, बड़े बड़े प्रभुपाद डिसाइपल को उन्होंने ठीक किया था, खुद भी एलोपैथी डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक भी थे, सबको ठीक करने के लिए आए थे बम्बई में। और खुद वो हमारे मंदिर में बैटरी रिक्शा चलता है ना, उस बैटरी रिक्शा से, ऐसे बैटरी रिक्शा से पलटी होकर के गिर गए और मर गए, सबको ठीक करने वाले। और मैं आपके सामने बैठा हूं, एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहा हूं, स्कॉर्पियो गाड़ी में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, आगे मल्टी एक्सल ट्रक को धड़क दिया, फिर भी जीवित। तो मैंने एक वरिष्ठ भक्त को पूछा जो प्रभुपाद जी से मिले थे, मैं ऐसे कैसे, वो इतने जिम्मेदार थे, इतने सारे इस्कॉन की सेवा कर रहे थे, प्रभुपाद जी के लिए इतने बड़ी बड़ी काम कर कार्य कर रहे थे, और मैं गुड फॉर नथिंग, यूजलेस, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इस्कॉन के लिए क्या है, सुबह एक प्लेट प्रसाद और शाम को एक प्लेट प्रसाद, कुछ भी करता नहीं, फिर भी जीवित रखा। तो वो बोले कृष्ण आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनका कुछ तो प्लान रहेगा। तो उसी तरह से हमें समझना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मृत्यु बोल के नहीं आती या समझा के नहीं थे, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा, पहले कभी नोटिस दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता। मृत्यु कभी भी आ सकती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, दिस वर्ल्ड इज मेंट फॉर मेंटल मैन। हाँ वही बोलते हैं आगे, ये दुनिया में दो चीजें सत्य है, एक हरिनाम और मृत्यु। हम बार बार मृत्यु को भूलते हैं, इसलिए हरिनाम का आश्रय ले नहीं पाते। मृत्यु कभी भी आ सकती है। एक बार एक व्यक्ति को यमराज के दरबार में लिखे गया था, वो जेंटलमैन था बम्बई से शहर, ऐसा अपना ऐसा टाई बांधा, बोला 3 नोटिस दिए बगैर हमको हमारा घर मालिक भी घर से खाली नहीं करता, आपने मेरे को कैसे शरीर से खाली करवाया। तो यमदूत बोले, चित्रगुप्त बोले, देखिए यमराज जी महाशय, हमने सबसे पहले इसको चश्मा डालवा दिया, आंखें खराब की, पहला नोटिस भेजा उसको, उसने उसके आंखें खराब की पहला नोटिस भेजा, उसने चश्मा पहन के हमारे ऊपर ऐसा देखा, फिर उसके बाद में उसके बाल सफेद करके दूसरा नोटिस भेजा, उसने गोदरेज हेयर डाई लगा के हमारे तरफ ऐसा ऐसा किया उसने, बाद में उसके हमने दांत गिराए, उसने डुप्लीकेट दांत बिठा के ही किया हमारे तरफ, कितना नोटिस भेजने का इसको। फिर बाद में हम उसको लेके गए, उसके बाद तो हम नोटिस देते ही नहीं। तो इस दुनिया में पग पग पे हर वापस दूसरी सांस ले रहे ना, चमत्कार है। नींद में सोए दूसरे दिन उठे, मतलब चमत्कार है। एक आचार्य बोले, हम हर रोज जिंदा है, भगवान धन्यवाद आज का दिन आपके लिए। हरे कृष्णा, ठीक है, जय श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।